महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक क्रांति के जनक थे। उन्होंने पूरी जिंदगी समाज में मौजूद धर्म भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, लिंग भेद के खिलाफ कार्य किया। ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 में और उनकी मृत्यु हुई 28 नवंबर 1890 में। ज्योतिबा फुले के पिता ने उनको 7 साल की उम्र में एक मराठी स्कूल में भर्ती करवा दिया ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद ब्राह्मण कर्मचारी थे या शहर के ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने उनके पिता को सलाह दी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपने कारोबार में लगाएं। लेकिन ये ज्योतिबा फुले की मेहनत और लगन का नतीजा है कि वो शिक्षा प्राप्त कर पाए। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत में सामाजिक क्रांति के जनक थे, वे आधुनिक कविता के भी जनक थे। ज्योतिबा ने साहित्य को जनसाधारण से जोड़ा। अभी तक शासक या पौराणिक चरित्र या घटनाएं ही साहित्य का विषय बनती थी, सामाजिक यथार्थ से जोड़कर आम आदमी की तकलीफों को साहित्य में उन्होंने स्थान दिया। छत्रपति शिवाजी का पवाड़ा, शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा, ग्राम जोशी के संबंध में ब्राह्मणों की चालाकी, अखंड आदि काव्य रचना उनका काव्य संसार है। ज्योतिबा ने अपनी कविताओं में ब्राह्मणों के सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती दी। उन्होंने ब्राह्मणी संस्कृति व परंपराओं के समानांतर शूद्र संस्कृति व परंपराओं का उल्लेख किया। ज्योतिबा फुले का संबंध समाज की निचली श्रेणियों से था। वर्गीय पृष्ठभूमि की भिन्नता उसके सवालों, मुद्दों व उनके प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। समाज का उच्च वर्गीय बुद्धिजीवी, जहां साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच, धर्मों मतों की श्रेष्ठता के बीच संघर्ष का महाख्यान लिख रहा था, वहीं ज्योतिबा फुले ने भट्ट जी, सेठ जी तथा शूद्र अतिशूद्र यानी उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के बीच, पुरुष वर्चस्व तथा स्त्री मुक्ति के बीच, शास्त्रीय वर्चस्वी भाषाओं तथा लोक भाषाओं के बीच, शास्त्रीय ज्ञान तथा अनुभवजन्य लोक ज्ञान के बीच संघर्ष को अभिव्यक्ति दी। जहां कथित उच्च जाति के बुद्धिजीवी ब्राह्मण ग्रंथों की सत्ता को स्थापित कर रहे थे, वहीं ज्योतिबा ने उनकी नैतिक सत्ता को चुनौती दी। ज्योतिबा की कविताओं में मेहनतकश वर्ग के चरित्रों की कर्मठता, श्रमशीलता के जीवंत चित्र हैं, जो उनकी सामाजिक भूमिका और मानवीय गरिमा को उजागर करते हैं। दूसरी ओर उनकी रचनाओं में मुफ्त को और शोषक की धूर्तता, चालाकी व कुटिलतापूर्ण व्यवहार को भी उजागर किया है। सामाजिक भेदभाव का चित्रण, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, आर्थिक शोषण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक वर्चस्व व धार्मिक पाखंड पर चोट, मेहनत कष्ट की महत्ता को रेखांकित करता तथा शोषण से मुक्ति की चेतना पैदा करता ज्योतिबा के काव्य को आधुनिक दलित साहित्य का आदि स्वर कहा जा सकता है। ज्योतिबा का साहित्य अनुभव पर आधारित है। ज्योतिबा अपने साहित्य से एक और तो शूद्रों अतिशूद्रों को ब्राह्मणवादी नैतिक बोध से मुक्ति दिलवाने के लिए तथा दूसरी ओर इस दलित वंचित उपेक्षित वर्ग के विकास के लिए अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। उन्होंने लिखा, हमारे देश में ब्राह्मणों का कितना महत्व है और वे लोग धर्म के नाम पर आम लोगों पर कितना अन्याय करते हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं। यह अनुभव करते हुए भी कि कोई यह कहेगा कि इस किताब को लिखने की क्या आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह जवाब दिया जा सकता है कि ब्राह्मण लोग सभी जातियों के साथ अपना षड्यंत्र एक जैसा नहीं चलाते। कुनबी, माली आदि शूद्र लोगों में उनकी पुरोहितगिरी बहुत चलती है, लेकिन यह बात अन्य जाति के लोगों को, खासकर आजकल के प्रगतिशील लोगों को मालूम नहीं। जो लोग पढ़ लिख गए, जिन्होंने अपना विकास किया, उनमें ब्राह्मणों का, पुरोहितों का महत्व दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन यह बात आज शूद्र जातियों में नहीं है। उनके घरों में आज भी बाजीराव के काल की पुरोहितशाही राज कर रही है। ऐसे लोगों को इस गुलामी से मुक्त करने के लिए ज्योतिबा ने यह छोटा सा प्रयास किया है। उनका इसमें दूसरा उद्देश्य यह भी है कि हमारी जागृत अंग्रेज सरकार को अपनी प्रजा के इस बहुत ही उपेक्षित वर्ग को शिक्षित करना चाहिए और उनकी आंखों की नींद समाप्त कर देनी चाहिए। उनको ब्राह्मण पुरोहितशाही की दासता से मुक्त करना चाहिए। इसलिए यदि यह उद्देश्य सफल हुआ तो ग्रंथ रचयिता की मेहनत सफल होगी। दलित जनता में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपने नायकों पर ज्योतिबा फुले ने रचनाएं लिखी। शिवाजी का पवाड़ा के बारे में उन्होंने लिखा कि यह छोटा सा प्रयास जानकार लोगों को अच्छा लगे तो इस तरह के पवाड़े उन पर भी लिखे जाएंगे जो लोग आर्य ब्राह्मणों द्वारा मटिया मेट कर दिए जाने के पहले क्षत्रियों में महासुमा यानी महिषासुर जैसे महावीर हो गए। ये पवाड़े बड़े उत्साह के साथ पेश किए जाएंगे। ज्योतिबा फुले साधारण जन की भाषा में सरल ढंग से उपयोगी विषय प्रस्तुत करते थे। भाषा के मामले में वो पूरी तरह सचेत थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों की भूमिका में इस बात को पूरी तरह से लिखा है। शिवाजी का पवाड़ा लिखते हुए उन्होंने भूमिका में लिखा कि इस पवाड़े को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि कुनबी माली महार मातंग और जिन क्षत्रियों को पाताल में ढकेल दिया गया था अर्थात मटिया मेट कर दिया गया था उनके काम आए। मैंने यहां बड़े बड़े लंबे चौड़े संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन जहां मेरा बस नहीं चला वहां मैंने निर्वहन के लिए साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैंने यहां यह भी प्रयास किया है कि कुनबियों को समझ में आने योग्य सरल भाषा होनी चाहिए और उनको पसंद आए उसी तर्ज में रचना की है। भाषा का सवाल असल में सत्ता संघर्ष से जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में मराठी के संत ने सवाल उठाया था कि संस्कृत भाषा देवताओं ने बनाई तो मराठी क्या चोरू चक्कों से आई। ज्योतिबा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में भाषा विज्ञान के नियमों का नहीं बल्कि आम धारणाओं और विश्वासों का प्रयोग करते थे। इस कारण कथित विद्वत समाज उनका उपहास भी करता था। और जो विष्णु शास्त्री चिपलुणकर है उन्होंने तो फुले की रचनाओं को बचकाना कहकर अस्वीकार कर दिया था और उनका घोर अपमान किया। उन्होंने फुले द्वारा की गई भाषा शास्त्रीय व्याख्याओं और व्याकरण के प्रारंभिक नियमों के प्रति उनके अज्ञान का मजाक उड़ाया। ज्योतिबा की भाषा में एक लोच थी जो विषय के अनुरूप उसका स्वरूप बनता था। सामाजिक भेदभाव व शोषक पर प्रहार के समय उनकी भाषा में आक्रोश व व्यंग की आग धधकने लगती थी। वहीं शोषित वर्गों की पीड़ा का वर्णन करते हुए वह भाषा गहरी संवेदना व सहानुभूति युक्त होकर पत्थर को भी पिघलाने की क्षमता रखती थी। शोषण के मार्मिक चित्र खींचने के लिए शब्दों का चयन कमाल का था। भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को जीवंत बनाता है। लूट को गेहूं और बाप का श्राद्ध, गोद का छोड़कर पेट की आशा करना, कुत्ते खा जाते पिसान अंधे का, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोयले को नित धोया रहा सफेद होने को, इस तरह के जो लोकोक्तियां और मुहावरे उनकी रचनाओं में यहां तहां मिल जाते हैं। ज्योतिबा के साहित्य की रचना का मकसद सौंदर्य कर्म में कीर्तिमान स्थापित करना नहीं था बल्कि लोगों से संवाद करना था। गद्य रचनाओं में दो पात्रों के बीच संवाद शैली का तकनीक प्रयोग किया। दो पात्रों के संवादों से विषय स्पष्ट होता जाता है। कविताओं में उन्होंने कथावाचन की शैली का प्रयोग किया तथा समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन का तुलनात्मक चित्रण किया। जिस समाज में साक्षर लोगों की संख्या सीमित हो वहां अभिव्यक्ति का शायद यही कारगर ढंग है। उनको अपने पाठकों श्रोताओं के ज्ञान के स्तर का एहसास था इसलिए उनकी सुविधा के लिए एक विषय को अनुभागों में बांट कर रखा है। यह उनकी रचनाओं की लेखन योजना का अनिवार्य हिस्सा है कि जिस विषय का वे वर्णन करते हैं उस पर केंद्रित हो जाते हैं। ब्राह्मणों की चालाकी कविता में भी इसीलिए 9 भाग किए हैं और हर भाग में पुरोहितों के शोषण के एक पक्ष को प्रस्तुत किया है। और शिवाजी का पवाड़ा में भी यही योजना है। गुलामगिरी 16 अध्यायों में, किसान का घोड़ा 5 अध्यायों में, सार्वजनिक सत्य धर्म अखंड आदि काव्य रचना को 6 अध्यायों में विभाजित किया। ज्योतिबा फुले जब ब्राह्मणों की धूर्तता और चालाकी का चित्रण करते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति और अद्भुत वर्णन क्षमता के दर्शन होते हैं। अपने साहित्य में उन्होंने समाज के शूद्रों व अति शूद्रों की दशा का वर्णन किया। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ने के लिए ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों देवताओं परंपराओं के समानांतर शूद्र देवताओं धर्म व परंपराओं को निर्मित करने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय इतिहास को ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच संघर्ष का इतिहास कहा है। ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासी शूद्रों को अपनी शक्ति से पराजित किया, उन पर अत्याचार किए और दास बना दिया। शूद्रों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों को श्रेष्ठता स्थापित करने वाले ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को ईश्वरीय रचना कहकर धर्म से जोड़ दिया। शूद्रों अति शूद्रों को अपवित्र कहकर अस्पृश्यता की अमानवीयता लाद दी गई और उन्हें सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत करके मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह सांस्कृतिक आक्रमण था जिससे स्थानीय संस्कृति को आर्य संस्कृति में बदल दिया। ज्योतिबा फुले गुलामी को समाप्त करने के खिलाफ कटिबद्ध थे। गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा, सैकड़ों साल से आज तक शूद्र आदि अतिशूद्र समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की जुल्म जातियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं? यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। ब्राह्मणों के सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ज्योतिबा ने अखंड आदि काव्य रचना ब्राह्मणों की चालाकी, ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा, कविताओं में ब्राह्मण देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई तथा ब्राह्मणों के अनैतिक व्यवहार की कड़ी आलोचना की। शूद्रों में सांस्कृतिक गौरव पैदा करने के लिए शूद्रों के नायकों, पौराणिक चरित्रों, स्थानीय देवी देवताओं को अपनी कविताओं में स्थान दिया। शिवाजी का पवाड़ा, दस्यु का पवाड़ा आदि कविताओं में व्यक्त किया। गणपति कविता में गणेश देवता का मजाक उड़ाया। पशु सिर में सूंड पुत्र मानव का, स्वांग गणपति का लिखा है ग्रंथ में, वैसे चूहे पर लाद करके शरीर फूंकता है सांसे सूंड से, अछूतों से दुराव, पंडों को लड्डू देता, पवित्रता की डींग हांकता जैसे, गारा खुदवा कर बनाया गणेश, किया ढबुआ ढेर भाद्रपद में। और इसके समानांतर उन्होंने शूद्र देवताओं की स्थापना की। ब्राह्मणों ने अपने खान पान की शुद्धता के आधार पर स्वयं को सबसे ऊपरी श्रेणी में रखा हुआ था। वे अपने को ईश्वर की श्रेष्ठ कृति के तौर पर प्रस्तुत करने में कोई शर्म नहीं करते थे। शूद्र वर्ग के मानस पर वे छाए हुए थे। उनके प्रति श्रद्धा व पूज्य भाव ही सबसे बड़ी बाधा थी। वे ब्राह्मणों को धर्म का, सृष्टि का उद्धारक मानते थे। ज्योतिबा ने ब्राह्मणों के दोगले चरित्र को बेबाकी से अपनी कविताओं में चित्रण किया। ब्राह्मण धर्म भारत में सत्ताशील शक्तियों का सहयोगी होकर सत्ता का आनंद लेता रहा है। पवित्रता एक ढोंग है, शूद्रों से नफरत को दर्शाती है। ब्राह्मण अंग्रेजों के साथ खाते पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। उनके व्यवहार पर भी ज्योतिबा ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि मेहनतकश जनता में फूट पैदा करके उनका शोषण करते हैं। धार्मिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से वे श्रद्धा तो क्या, आदर के भी पात्र नहीं है। उन्होंने लिखा, चांडाल ब्राह्मण मातंग दूर रखते, स्वयं पानी भरते कुएं से, प्यास से व्याकुल यदि मातंग मरा, दया ब्राह्मण को आती नहीं। मानव के द्रोही, घमंडी, अभिमानी, दुनिया में दुर्गुणी, भकोसू, मातंगों की शादी में दक्षिणा वे लेते, धोकर के खाते, ज्योति कहे। ब्राह्मण कुलकर्णी शूद्रों को भड़काते, झगड़े खड़े करते गांव गांव में, झगड़े के वास्ते शूद्रों को कर्ज देते, ब्राह्मण रिश्वत लेते सभी से। ज्ञानहीन शूद्र ब्राह्मणों ने किए बदला लिया हमेशा से, ऐसे लोगों को शिक्षा दो जल्दी, भिक्षा प्राप्त करके, ज्योति कहे। सत्यपाठ कविता में उन्होंने ब्राह्मणों के दोगले चरित्र को चित्रित किया। उन्होंने लिखा, ब्राह्मण पवित्रता का ढोंग रचते हैं, वास्तव में उनका व्यवहार घृणित है। अंग्रेजों के साथ मध्य मांस खाते, मातंग को दोष देते भ्रष्ट कहके, न्याय देते समय रिश्वत खाते, प्रोत्साहन देते अन्याय को, योनि का द्वार मोद से चूसते, ब्राह्मणों को हेय नीच बच्चे, ऐसे मानव द्रोही आर्यों को समझिए, पूरी तरह त्याग कीजिए, ज्योति कहे। जाति भेद ब्राह्मणों को यथार्थ लगता, मल्लेच्छों को चीरता स्वार्थ के लिए, ब्राह्मण सारे श्रेष्ठ खानदान से बनते, हीन समझते दुनिया को। धर्म भेद उन्होंने स्वार्थ के लिए किया, शूद्रों को लूटने के लिए धर्म के नाम पर। आर्य और ख्रिस्त मोहम्मदी को बताओ, नहीं उनमें भेद, ज्योति कहे। भारतीय समाज में ज्ञान वर्चस्व बनाए रखने का साधन रहा है। अन्य वर्णों वर्गों तक ज्ञान न पहुंचे, समाज के उच्च वर्गों ने इसके प्रावधान किए। शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा व अध्ययन से वंचित करके ही समाज का उच्च वर्ण उनमें दासता की स्वीकृति पनपाने में सफल रहा है। कपोल कल्पित धार्मिक कथाओं और ब्राह्मणवादी आचार व्यवहार को स्वीकार करके वंचित वर्ग सांस्कृतिक उपनिवेश का शिकार रहा है। ज्योतिबा को सामाजिक शोषण व गुलामी का कारण अज्ञानता और अविद्या में दिखाई दिया। उन्होंने लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम, शिक्षा का ढंग, शिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा की उपयोगिता को कविताओं में व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा में सामाजिक भेदभाव को उद्घाटित किया। ब्राह्मण शिक्षक मिट्टी में मिलाता पढ़ाई शूद्रों की, यही अनुभव है, यही सत्य है। ये उन्होंने शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा, जो कविता लिखी 1869 में, उसमें लिखा। शूद्र बच्चों को ब्राह्मण स्कूल में सताते, शूद्र बच्चों को ब्राह्मण स्कूल में सताते, मजाक उड़ाते कक्षा में, जाति के ब्राह्मण गर्व से चिल्लाते, सेखी बगाड़ते, हम ही श्रेष्ठ। शिक्षा समझा कर देते स्वजाति को, बार बार गलती करने पर भी। शिक्षा समझा कर देते स्वजाति को, बार बार गलती करने पर भी। पर जाति के बच्चे गलती पर खाते थप्पड़ मुक्का, कान ऐंठते जोर से, मन से घायल कर शूद्र बालक को देते भगा, खाना पूर्ति को रखते केवल। शिक्षा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। अध्यापक से लेकर अधिकारी तक ब्राह्मण है। ब्राह्मण शिक्षक झूठी रिपोर्ट बनाते हैं, अपना रोजगार बनाए रखते हैं। उनकी निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा देने में कोई रुचि नहीं है। वे खाना पूर्ति के लिए उनका दाखिला करते हैं। उन्होंने लिखा इस बारे में, कविता में लिखा, जाति के निरीक्षक हाजिरी जांचते, गुणी कहते स्कूल मास्टर, पंडित की तारीफ अपार, रपट में लंबा चौड़ा विस्तार, संक्षेप में गाता हूं सार, मूर्ख जात शूद्र की नहीं प्रवृत्ति लिखने की, ऐसी वैसी चुगलखोरी करते, जाति वालों की करते बढ़ती सिद्ध साधक होकर, नहीं रखता कोई इन पर नजर, कुत्ते खा जाते पिसान अंधे का, बच्चे वे गैरों के ही पढ़ाते। ये तो शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक का पवाड़ा, जो कविता ज्योतिबा फुले ने लिखी, वो बड़ी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। क्योंकि इस कविता के अंदर जो 19वीं शताब्दी के में जब शिक्षा शुरू हुई, अधिकांश शिक्षक ब्राह्मण थे और वे अपने जो जातीय पूर्वाग्रह थे, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह थे, वो उनके अंदर मौजूद थे। और जो शूद्र बच्चे थे, अछूत बच्चे थे, उनको वो शिक्षा देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो भेदभाव करते थे। और ज्योतिबा फुले ने अपनी इस कविता में इस बात को बड़े विस्तार से और बारीकी से एक एक घटना का जिक्र करते हुए इस बात को लिखा है। और स्कूल टीचर क्या करते थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उस जमाने की। स्कूल के शिक्षक अखबार पढ़ते रहते हैं, कहते हैं कि उनकी पढ़ने में रुचि नहीं है, ना ही उनमें क्षमता है, असल में वे उनको पढ़ाना नहीं चाहते। ज्योतिबा का कहना है कि ब्राह्मण शिक्षक निम्न जाति के बच्चों को कभी नहीं पढ़ाएंगे और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। नित स्नान पूजा पाठ करते पंडित जी, लड़के ही ले लेते हाजिरी, वक्त काटते टैफा पढ़ाकर शूद्र बच्चों को, गुरु का पद चलाते। जल्दबाजी में आए 8 बजते बजते, जम गए कुर्सी आसन पर, 10 बजा देते ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाते, देखते छांव पहुंची कहां, माथे का पसीना पोंछते, थक गए बेचारे भाग्य को कोसते, माथा टिकाते टेबल पर आराम से, दिखाते बच्चों को कितना प्रेम, हड़बड़ा कर उठते भोजन समय, झट छुट्टी करते स्कूल की, सो जाते शांति से भोजन पाकर, पढ़ते फिर न्यूज़पेपर, लिखते पत्र आखिर, आने पर ठंडक, थोड़ी देर जाते स्कूल, मर्जी से पढ़ाते। ये उस समय के जो शिक्षक थे, पंडित शिक्षक होते थे, जोशी जी होते थे, ये उनके बारे में लिखा है। ज्योतिबा ने शिक्षा के ढांचे को वर्ग विश्लेषण करते हुए लिखा कि सरकार कुछ मधुर सपने पाले हुए है। वो मधुर सपना क्या है कि उच्च वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करके निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे। इस सोच के साथ वे लगान के रूप में जो एकत्रित की गई गरीबों के गाढ़े की कमाई को उच्च वर्गों के लोगों पर खर्च करती है। उच्च वर्ग के बच्चे स्कूलों से शिक्षा पाकर अपनी व्यक्तिगत उन्नति करते हैं, लेकिन समाज की उन्नति में कोई भूमिका नहीं निभाते। उन्होंने लिखा, अन्य जाति के गुरु सात्विक ज्ञान के नमूने, फल देगा पेड़ फिर, शूद्रों का सुख होगा, ब्राह्मण शर्मिंदा, न्याय नहीं शूद्र बालक को, बेचैन होते ज्योति। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणी सत्ता के मुकाबले में अंग्रेजी शासन को सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित लोगों के लिए हितकर मानते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन के उच्च वर्गीय चरित्र के कारण उनकी बहुत आलोचना करते थे। वे इस बात से दुखी थे कि अंग्रेजी शासन की नीतियां अंततः सामाजिक तौर पर उच्च वर्ग के लोगों के हक में है। लोगों की गाढ़ी कमाई का धन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विकास पर ही खर्च हो जाता है। उन्होंने लिखा, लगान मिलाकर शूद्र फंड कितना देते, धूल तारे खाते, शिक्षा खाती, शूद्र आदि को उन्होंने कितना पढ़ाया, कर्मचारी किए, दिखाओ हमें। शूद्रों के लिए गोरे मन में कुड़ते, ब्राह्मणों को ओहदे देते जोखिम के, शूद्र थक गए फंड दे देते, ब्राह्मणों को पालते, ज्योति कहे। अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की जकड़ ढीली पड़ी थी। अंग्रेजी शासन की नीतियों का भी ब्राह्मणों को सर्वाधिक लाभ होता है। अंग्रेजी शासन में सरकारी प्रशासन में ब्राह्मणों का आधिपत्य था। पटवारी, तहसीलदार, न्यायालय में कर्मचारी तथा शिक्षक आदि सब ब्राह्मण थे। शूद्रों अतिशूद्रों के प्रति प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रुख के कारण उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। पटवारी लगान लगाकर किसान को सताते हैं, यदि किसान उसके खिलाफ तहसीलदार पर शिकायत करता है तो दोनों ब्राह्मण होने के कारण किसान को न्याय नहीं मिलता। न्यायालय के ब्राह्मण कर्मचारी न्यायाधीश के समक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं, जिस कारण किसानों को न्याय नहीं मिल। स्कूलों में ब्राह्मण शिक्षक शूद्रों अति शूद्रों के छात्रों के प्रति भेदभाव करते हैं, वे उनको पढ़ाते नहीं है। प्रशासन में दूसरी जाति के लोगों को भर्ती करके ही जातिगत पक्षपात व शोषण से बचा जा सकता है। ज्योतिबा ने जनसंख्या के अनुपात में सभी जातियों के लोगों को प्रशासन में भागीदारी की मांग की। दोष सही में यह सरकार चारों ओर भिक्षुक शाही की भरमार, कुणबियों का कोई रखवाला नहीं, हर जाति की जितनी हो संख्या ओहदे दो उनको उतने, यही है न्याय की रीति। बनाओ शिक्षक अन्य जाति के, मिसालें सच्चे ज्ञान की, केवल माली कुनबियों के और महार मतंगों के। धर्म आम लोगों की चेतना व जीवन व्यवहार को प्रभावित नियंत्रित करता रहा। धर्म मुक्ति का संदेश लेकर आया तो शोषण का जरिया भी रहा है। धर्म संस्थागत रूप धारण करता है तो विधि विधानों का पुलिंदा बनकर भी रह जाता है। ब्राह्मणों की चालाकी कविता 9 भागों में विभाजित है। बच्चा पैदा होना, विवाह के मौके पर, ऋतु शांति के अवसर पर, गृह प्रवेश के अवसर पर, कथा सुनाने के बहाने, मृत्यु के अवसर पर, छोटे बड़े त्योहारों के अवसर पर, ब्राह्मण शूद्रों से दान के नाम पर किस तरह ठगते हैं, इसका बहुत ही विश्वसनीय चित्रण इस कविता में किया है। ज्योतिबा ने सत्य को ही धर्म की संज्ञा दी, तर्क को तथा पीड़ितों की सेवा को ही सत्य कहा है। ब्राह्मण ग्रंथों में व्यक्त को असत्य कहा है। वे इसे बार बार दोहराते हैं कि सत्य के उदय से ही मुक्ति संभव है। सत्योदय होते ही रुक गई वेद मति, उनकी कविता है ये, कि सत्योदय होते ही रुक गई वेद मति, देखते ही सारी झूठी सिद्ध हुई स्मृति, सत्य तेरी महिमा सुनकर पुराणों को, मुंह हो गए काले, किया काले करतूतों को, देखकर तुझे हक्के बक्के होते हैं पाखंडी, देखकर तुझे हक्के बक्के होते हैं पाखंडी, लज्जित होकर नीचे डाल देते कंधी, कृपा तेरी होती मूढ़ जनों पर, भूदेव डरते मन में हाथ माथे पर, कृपा का सागर है तू सत्य जान इसे, मुक्त किया है हमें ब्रह्मजाल से। भगवान का नित स्मरण करके स्वीकार सत्य सिद्धांत को, झूठे धर्म को त्याग करके जोड़ो भाईचारे को, अहम ब्रह्म हो करके त्यागो नहीं दीनों को, शुद्धता का नाम करके छाने न दो चर्बी आंखों को, अलाए बलाए रोंद करके जानो सत्य राजा को, स्वयं मेहनत करके पालो अपने परिवार को, नित्य सत्य बोल करके छोड़ो पाखंडी सिद्धांतों को, शिक्षा शूद्रों को दे करके शर्मिंदा कियो भूदेवों को। ज्योतिबा फूले सत्य को सुखमय जीवन का आधार मानते थे। उनका मानना था सत्य आचरण के बगैर मानव प्राणी दुनिया में सुखी नहीं होगा। इसके लिए कुछ सबूत दे रहा हूं। सत्य सभी का है आदि घर, सभी धर्मों का है पीहर, दुनिया में है सुख सारा, दुनिया में सुख है सारा, खास सत्य का है वह छोकरा, सत्य सुख का है आधार, बाकी सारा है अंधकार, सत्य दुनिया में है सत्य का बल, निकालता झगड़ालू का जल।